वो भगवान के नाम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान को अग्नि कहकर संबोधित किया है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इससे वो देवता नहीं बन जाते। क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि वेदांत सूत्रों में उनकी व्याख्या करते हुए बलदेव विद्याभूषण इस चीज को समझाते हैं। वेदांत सूत्र है पहला 1.4.28, उसमें बहुत सुंदर वर्णन बलदेव विद्याभूषण ने अलग अलग प्रमाण देकर किया है कि भगवान के जो जितने भी देवताओं के नाम हैं, भगवान को नामों से संबोधित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान ने ही ये नाम अपने नाम देवताओं को दिए। तो इसका अर्थ ये है कि देवताओं के जो नाम हैं भगवान के नाम हैं, भगवान ने उनको दे दिए हैं। इसलिए अगर भगवान को उनके संबोधित किया जाता है, जैसे यहाँ अग्नि किया गया, तो फिर उसमें कोई गलती नहीं है। तो वहां वेदांत सूत्र है एतेन सर्वे व्याख्यादतः व्याख्यादतः, ये वेदांत सूत्र है। और उसकी परिभाषा देते हुए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि इस जगत के जितने भी नाम हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान के ही नाम है, क्योंकि सब कुछ भगवान से आता है। और फिर वो उसका प्रमाण देने के लिए अलग अलग प्रमाणों को देते हैं। जैसे वो बताते हैं कि वैष्णवायन मुनि ने कहा है कि ये जितने भी नाम हैं इसमें देवताओं के यानी ये सब श्री कृष्ण के नाम हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि केवल नारायण और कुछ और नामों को छोड़कर भगवान श्री हरि ने अपने सारे नाम देवताओं को दे दिए। स्कंद पुराण का वर्णन, इसका अर्थ क्या है कि सारे नाम भगवान के हैं, केवल कुछ नाम जैसे नारायण या कुछ और नामों को छोड़कर बाकी हरि, भगवान हरि ने अपने सारे नाम देवताओं को दे दिए। क्यों समझा रहे हैं आपको? कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को ऐसे कभी देवताओं के नाम से संबोधित कर दिया तो क्या वो भी देवता हैं या फिर भगवान है। तो इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कोई
हरे कृष्ण मंत्र 18 तात्पर्य भगवान की शरण ग्रहण करने तथा उनकी अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं, जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है, जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है।
हमारे पापों को भी वो जला सकते हैं ना? आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, चौराग्र गण्यम अष्टकम, सुना है? तो उसमें क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात की गई है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। तो अनेक जन्मों से जो अर्जित हमने पाप किए हैं, इतना बड़ा चोर और कोई हो भी नहीं सकता है ना। एक ही चोर है जो ये सब चुरा सकता है, आपका धन कोई भी चुरा सकता है, आपकी संपत्ति कोई भी चुरा सकता है, लेकिन जो आपने अनेक जन्मों से संपत्ति अर्जित की है, जिसको बड़े हृदय से लगा कर रखा है, आपने छोड़ना नहीं चाहते हैं, अनेक जन्म अर्जित पाप चौरा, तो उसको भगवान चुरा लेते हैं। ये यहाँ पर वर्णन किया है कि वो जला सकते हैं भगवान, तो केवल वही कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पाप बने रहेंगे। इसीलिए कृष्ण को हृदय में लाएंगे तो कृष्ण पूर्ण शुद्ध हैं, जितनी अशुद्धता है वो चली जाएगी, लेकिन अगर कृष्ण को हृदय में नहीं लाएंगे तो केवल अशुद्धता बढ़ती रहेगी। तो यहाँ भगवान को अग्नि कहा गया है। बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं एक नियम पालन करना चाहिए जब हम ये उपनिषद शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, तो क्या नियम होना चाहिए कि जब ये जो नाम कहे जाते हैं, जैसे अग्नि वायु इत्यादि नाम कहे जाते हैं, तो अगर साधारणता ये जो वेदों की शिक्षाएं हैं उनके विरोधी नहीं लगते हैं, तो ये नाम देवताओं के होते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर ये जो नाम है वेदों की शिक्षाओं के विरोधी प्रतीत नहीं होते, तब ये शिक्षाएं, ये जो नाम है वो केवल देवताओं के नाम है। लेकिन जब ये वेदों की शिक्षाओं के विरोधी प्रतीत होते हैं तो ये विष्णु के नाम। वेदों की शिक्षाएं क्या है? देवता और भगवान में अंतर है, ये वेदों की शिक्षाएं हैं। लेकिन जब भगवान को देवता संबोधित किया जा रहा है तो वेदों की शिक्षाओं के विरोधी लग रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो भगवान विष्णु का नाम। ठीक है, समझ में आया या? हाँ जी।
दूसरा अपराध है जहाँ पे भगवान का नाम और शिव ब्रह्मा इत्यादि का नाम अभिन्न है समस्त विश्व में, उसके बारे में बता के जहाँ दूसरा शिव शताम नाम श्लोक है, दूसरा अपराध के बारे
में देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान
अभिन्न शब्द है,
उसको
बता के स्पष्ट हो जाएगा।
तो भगवान यहाँ पर जैसे कहा गया है कि भगवान के नाम से देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना, तो मतलब उनसे अलग समझना, ये भी एक अपराध है। तो कैसे अपराध है? जब हम भगवान देवी देवताओं के नाम लेते हैं, यहाँ जैसे बता रहे हैं कि सब भगवान के हैं, तो वे भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ना तो उनका नाम स्वतंत्र है ना वे स्वतंत्र है देवी देवता। लेकिन अगर हम उनको स्वतंत्र माने और या देवी देवताओं के नामों को स्वतंत्र माने कि ये अलग है और कृष्ण अलग है, हम दोनों नाम ले सकते हैं, तो ना तो वो स्वतंत्र हैं, इसीलिए कहा गया कि नाम उन्हीं के हैं। तो देवी देवताओं के नाम को भगवान से स्वतंत्र मानना या समान मानना, तो समान भी नहीं है देवी देवता। तो किस दृष्टि से समान नहीं है भगवान का नाम और देवी देवताओं का? साधारण वेदों की शिक्षाओं के आधार पर। तो वेदों की शिक्षाएं क्या है? भगवान परम है, देवताओं में अंतर है, तो उस दृष्टि से समान नहीं है। लेकिन जब वेदों के जैसे यहाँ का वर्णन है कि ये भी नहीं मानना चाहिए कि इसका अर्थ है कि वो स्वतंत्र है, उनका नाम स्वतंत्र है, वो भी भगवान से ही आता है, तो वो भगवान से अभिन्न भी है, मतलब स्वतंत्र नहीं है लेकिन समान नहीं। इसको कैसे समझ सकते कि कोई स्वतंत्र नहीं है समान नहीं है? सरल है, कोई स्वामी है और कोई दास है, तो दास स्वामी से स्वतंत्र नहीं है, स्वामी के अधीन है लेकिन दास स्वामी नहीं है, राइट? तो समान भी नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं है। ठीक है, ओके, आगे पढ़िए।
उन परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है और उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके मुख के ऊपर का दीप्तिमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्मकांड पथ सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों की विधि विधानों से लेश मात्र भी विस्तृत होने पर विकर्म में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जो कर्ता के हित में नहीं होते, ऐसे विकर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्र तृप्ति के लिए किए जाते हैं, अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं।
तो यहाँ जो कर्मकांड इत्यादि दिया गया है कि कर्मकांड देते हैं भगवान, इसलिए दिए गए कर्मकांड वेदों में हाँ रेगुलेशन में आने चाहिए। तो जनरली हम लोग कर्मकांडों में फंस जाते हैं और भगवान की प्राप्ति को भूल जाते हैं। तो कर्मकांड का उद्देश्य क्या है? नियमों का पालन करते हुए भगवान की ओर बढ़ना, ये कर्मकांड का उद्देश्य। कई बार लोग पूछते हैं वेदों में कर्मकांड क्यों दिए गए हैं, सीधे भक्ति दे देते, इतना सारा चीज बता दिए ये करो तो व्यक्ति तो स्वाभाविक तो आकर्षित हो जाएगा, तो क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि जो कृष्ण की ओर सीधे आकर्षित नहीं है वो धीरे धीरे कृष्ण की ओर आकर्षित हो। जैसे कोई नियम पालन ही नहीं करता है, मनुष्यों में सबसे निम्न श्रेणी होती है जो किसी नियम का पालन नहीं करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं, कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कुछ नहीं, तो उन लोगों को आप सीधे भगवान की भक्ति में ला नहीं सकते। तो इसीलिए वेद धीरे धीरे लाते हैं, तो कर्म कांड देते हैं, कुछ आकर्षण करते हैं। आप भोग करना चाहते हो और बड़ा भोग मिलेगा, थोड़ा सा ये कर लो तो व्यक्ति कर लेता है, थोड़ा ये मंत्र का उच्चारण कर लो, थोड़ा ये यज्ञ कर लो, व्यक्ति कर लेता है। फिर धीरे धीरे जब करने लगता है उसको और ऊंची की कामना होती है, तब फिर कहते कि थोड़ा ज्ञान ले लो, ज्ञान आ जाता है कहते उपासना करो, इसलिए धीरे धीरे ऊपर कर्मकांड को बुलाया जाता है। यस
प्रभु जी, प्रश्न ये है, जैसा कि भगवद गीता पढ़ाया भी गया था हमको, कर्मकांड इत्यादि ग्रेजुएशन प्रोसेस ऑफ एलिवेशन, अभी और गहराई से इसको विचार करके देखें तो जैसे यहाँ पर लिखा भी है, अंतिम ऐसे कर्म आप साक्षात्कार के मार्ग में बाधा बनते हैं क्योंकि ये पूरी प्रतिक्रिया की जाते हैं। तो तात्विक दृष्टिकोण से है कर्मकांड आप साक्षात्कार मार्ग के या भक्ति प्राप्त करने के लिए बाधा है, एक तरफ ये स्थापित होता है। दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि जब प्रभुपाद जी विदेशों में गए और जिनके पास कर्मकांड या किसी प्रकार की पुण्य की स्वीकृति नहीं थी, उन्होंने भक्ति को थोड़े से स्वीकार कर लिया, जबकि भारत को स्वीकार नहीं किया। इससे भी सिद्ध होता है कि कर्मकांड करने वाले लोग अपने अहंकार के कारण या सतोमय अहंकार के कारण भक्ति में नहीं आ सके। तो इससे क्या समझना चाहिए, कर्मकांड मात्र मायाजाल है तो भगवान ने विषय भगवान या वास्तव में कॉन्शियसनेस को एलिवेशन करने में सहायक है?
बहुत अच्छा। वैसे इस विषय की चर्चा हम लोग विस्तार से भगवद गीता में जब लैडर योगा लैडर पर आते हैं कि किस तरह एक से सीढ़ी योग की सीढ़ी पर, उस समय विस्तार से करते हैं, लेकिन प्रश्न किया है इसलिए थोड़ा सा बता दें। महत्वपूर्ण बात है कि क्या कर्मकांड सही में विरोधी है, दूसरी तरफ देखा गया बाहर गए तो कोई कर्मकांड नहीं किया था उन लोगों ने, लेकिन भक्ति को बड़े अच्छे से स्वीकार किया। कर्मकांड में व्यक्ति निश्चित अहंकारी हो जाता है और उस अहंकार के कारण वो भक्ति के शुद्ध मार्ग का स्वीकार नहीं कर पाता कभी कभी, जब बहुत ज्यादा कर्मकांड में लगता है, इसीलिए कर्मकांड को त्यागने के लिए कहा जाता है। श्री प्रभुपाद जब बाहर गए तो उन लोगों ने बड़ी आसानी से भक्ति को स्वीकारा, क्योंकि जैसे हम लोग समझाते हैं कि आप जब धीरे धीरे इंद्रिय भोग करके फिर कर्मकांड फिर इसमें जाते हो तो ये सीढ़ी की तरह है और भक्ति लिफ्ट की तरह है। इन सारी अवस्थाओं में चाहे व्यक्ति कर्मकांडी हो, ज्ञान योग ज्ञान कांड में हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, कोई भी स्थिति पर हो, अगर
दुराचारी
अगर उसको भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिल जाता है तो लिफ्ट की तरह सीधा होता, फिर उसको ये सब मार्ग से जाना नहीं पड़ता। तो जब प्रभुपाद ने उन लोगों को संग दिया तो उन लोगों को ये कर्मकांड ये वो इत्यादि करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीधा लिफ्ट से ऊपर ले गए। लेकिन साधारण मार्ग जो लोग अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि किसको अवसर मिलता है भगवान के भक्त का संग करने का, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड घर में घूमकर कोई भाग्यवान जीव है जिसको भगवान के भक्त का संग मिल जाता है, तो फिर जब ऐसा संग मिलता है तो उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमने देखा प्रभुपाद ने मलेच्छों को या जो भी एकदम निम्न स्तर के जिन्होंने कभी सुना नहीं था, प्रभुपाद से राधा कृष्ण का चित्र देखते थे तो पूछते थे ये कौन है, बड़े कृष्ण ये साइड में खड़े कौन, उनकी गर्लफ्रेंड है, तो प्रभुपाद समझाते थे, तो ये भी प्रभुपाद को समझाना पड़ता। तो ऐसे लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया, ये प्रभुपाद की शक्ति। लेकिन साधारण मार्ग कर्मकांड से, लेकिन कर्मकांड में अगर फंस जाए व्यक्ति तो उसका अहंकार भी हो जाता है और फिर कर्मकांड जैसे यहाँ लिखा बाधक बन जाता है। तो शुरुआत की अवस्था में कर्मकांड आवश्यक है जो लोगों को अंत का अवसंग नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर उसको त्यागना भी आवश्यक है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी पर हमने पांव रखा और जब दूसरी सीढ़ी पर हम पांव रख देते हैं तो हमें पिछले की सीढ़ी से उठाना होता है, अगर हम नहीं उठाएंगे तो कोई लाभ नहीं, तो बाधा है हमारी प्रगति में। तो कर्मकांड एक सीढ़ी की तरह है, हम उस पर हैं, अब जब हम आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ना भी उद्देश्य है, अगर हम ऊपर जाना है तो सीढ़ी पे खड़े रहे और बोले बहुत अच्छा लग रहा है तो कोई लाभ नहीं, तो जब उस पर चले गए तब हमें पीछे का पांव उठा लेना चाहिए। तो कर्मकांड को त्यागना अनिवार्य है, नहीं तो वो बाधा बन जाता है, हमें पकड़ कर रखता है, क्योंकि कर्मकांड बड़ा आकर्षक है, अब ये कीजिए ये प्राप्त होगा ये कीजिए, और साधारण जगत में हमें अच्छा लगता है, आपको कुछ तकलीफ है आप ये यज्ञ कर लीजिए वो यज्ञ कर लीजिए या ये करिए ये दान कीजिए, जैसे कल एकादशी थी शक्तिला एकादशी तो सबका तिल दान करना चाहिए जरूर है ना, और अगर आप उसको पढ़ें उसके महात्म्य को, बड़ा विचित्र महात्म्य है उसका, कर्मकांड की दृष्टि से है लेकिन विचित्र। तो ये दान करने से ही होता है, माघ के महीने में ये दान देने से ही होता है, ये सारे कर्मकांड है। क्यों आप कुछ कीजिए, आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान की भक्ति में भी कहा जाता है कि हमें भगवान को देना चाहिए। अभी हम मंदिर बनेगा तो स्वाभाविक है बहुत सहयोग लगेगा, तो क्या भगवान को देना भी कर्मकांड है? बिल्कुल नहीं, यही अंतर है। जैसे हम अपने लिए आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा कार्य बली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, तो अपने लिए करते हैं वो कर्मकांड है, भगवान के लिए करते हैं वो शुद्ध भक्ति है, वही चीज अगर हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, आगे बढ़िए।
आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के रूप हैं, जिनमें से ब्राह्मण संस्कृत से युक्त मानव शरीर ही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है।
ये जो गुण लिखे गए हैं इसको आप माफ कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी है आपका कि ब्राह्मण के कई गुणों में से 3 गुणों को लिखिए, तो यहाँ पर ये 6 गुण दिए गए हैं। ये जो ब्राह्मण सभ्यता होती है ये धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाने के लिए है, तो ये हमें मदद करते हैं ये जो गुण है यहाँ पर। जैसे क्या क्या गुण है पढ़िए फिर से।
ब्राह्मण संस्कृति में सत्य,
सत्य,
इंद्रिय संयम,
इंद्रिय संयम,
सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा,
तो ये हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये गुण आवश्यक है। सत्य को अपनाना आवश्यक है, हम लोग झूठ को अपनाए हुए हैं, यही हमारा जीवन का कष्ट है सबसे बड़ा। सारा हमने झूठ को स्वीकार कर लिया है। प्रहलाद महाराज ने कहा ना, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है आपने असत को ग्रहण किया हुआ, तो इसीलिए साधु मन्ये असुर वर्ण देहिना सदा समुद्वेग ध्यान असत ग्रहण। तो आपने क्या ग्रहण कर रखा है? असत को, सत को ग्रहण नहीं किया, और इसीलिए सदा समुद्वेग, सारी चिंताएं इसीलिए है। और मार्ग क्या है? हितवापातम ग्रह अंध रूपम मनम बतौ यत हरिमाश्रयिता। अपने पिता को कहते हैं सब छोड़ो, हरि का आश्रय लो, पिता ये प्रचारक है, कोई डरे नहीं। वो सूर्य ने सोचा रे ये तो विष्णु को इतना वो डर, उसने पूछा क्या सबसे अच्छी चीज क्या है? उन्होंने कहा आपके लिए बताता हूँ सबसे अच्छी चीज क्या, हे असुर श्रेष्ठ। देखिए अपने पिता को कैसे उन्होंने संबोधित किया, आप लोग कभी प्रयास मत कीजिए। कैसा लगेगा आपको आपका बच्चा कहेगा हे असुर श्रेष्ठ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्ग देहिनाम सदा, जिसने भी ये देह स्वीकार किया है देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्यान सद्ग्रहण, हमेशा उद्विग्न रहता है, चिंता में रहता है। कैसे उद्विग्न रहता है? समुद्विग्न, हाँ पूरा पूरी तरह से उद्विग्न रहता है। क्यों? सदा समुद्विग्न ध्यान असत ग्रहण, असत को ग्रहण किया। तो यही चीज है यहाँ, सत्यता ब्राह्मण का गुण, मतलब हमें परम सत्य भगवान को स्वीकार करना चाहिए। और फिर आगे के जो दिए गए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये धीरे धीरे हमें भगवान की ओर ले जाने में सहायता करते हैं। आगे बढ़े।
ऐसा नहीं है कि केवल अपने उच्च कुल का गर्व करें। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का सुअवसर है। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब तक अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती है।
तो आपका एक प्रश्न है ना कि केवल जन्म लेने से क्या कोई योग्य हो जाता है? जन्म नहीं है, भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के आधार पर है ये। जन्म नहीं है कि हमारा जन्म हो गया ब्राह्मण हो गया, उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ लेकिन वो ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं कर रहा है तो ब्रह्म बंधु कहलाता। ठीक है, आगे बढ़े।
जो भी मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।
उपेक्षा,
उपेक्षा। क्यों ही वह विपक्ष विपक्ष हो जाता है और आत्मसाक्षात्कार के मार्ग से पतित हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है।
हम लोग भी भक्ति में आए हैं, हमारा भी तो उद्देश्य है ना भक्ति में आने का। अगर हम उस उद्देश्य को भूल जाए, विपत हो जाए, तो क्या होगा? हमारा भी यही स्थिति होगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वो जीवन का जो उद्देश्य है मनुष्य के रूप में, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमें हमेशा भक्ति में आकर अपने उद्देश्य को याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए किस उद्देश्य से आए। किस उद्देश्य से आए भक्ति में? धन कमाने, प्रतिष्ठा लेने, बड़े व्यक्ति बनने, प्रसिद्ध बनने, क्या किस लिए आए भक्ति में? जब आप पहली बार आए थे कृष्ण प्रेम प्राप्त करने आए थे, पहली बार मंदिर इसीलिए आए कि कृष्ण प्रेम चाहिए, नहीं तो मंदिर है सबकी इच्छाएं थी ना कुछ, चलो जाएंगे घर में ठीक हो जाएगा। अरे उसने कह दिया, इतना बुला रहे हैं, बार बार फोन करते रहते, जाकर एक बार देख आते हैं क्या है। ऐसे तो नहीं, कोई इच्छा से तो नहीं आए थे, अलग अलग इच्छाओं से। कि अब हमें पता चल गया है कि जीवन भक्ति का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण को आनंद देना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तमा, अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति करना। तो इसीलिए इस उद्देश्य को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। सब कुछ भगवान का है, उनकी सेवा में लगाना है हमें, और उद्देश्य यह है कि उनकी सेवा करके अपने जीवन को सफल करना, और कोई कामना नहीं। अगर कोई और कामना आपकी है इसके अलावा, तो फिर ये भक्ति शुद्ध नहीं है। भक्ति भी गुणों में हो जाती है, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सत्वगुणी भक्ति और निर्गुणी भक्ति। इसका वर्णन भगवान कपिल भागवत में करते हैं कि कितने प्रकार की ये भी भक्ति भी। तो देखिए, हमारी भक्ति भी तमोगुणी हो सकती है। कैसे होती है तमोगुणी भक्ति? कि आप भगवान के सामने आए, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप भक्ति कर रहे हो, जप कर रहे हो, भगवान के सामने आए, जप करते समय सोचो कि भगवान उसने मेरा ऐसा किया, उसको छोड़ना नहीं, कुछ तो उसके जीवन में होना चाहिए। ये तमोगुणी भक्ति है। अगर हम किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए भक्ति कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो तमोगुण में चली गई भक्ति। या हमारा भाव ऐसा है कि हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी, कोई व्यक्ति कुछ कर देता है, आपसे शक्तिशाली, आप उसका कुछ कर नहीं पाते हैं, वो तो ठीक है, भगवान को बोलता है, वो तो ज़्यादा शक्तिशाली। तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति मान प्रतिष्ठा के लिए की गई कि हम जाए व्यासन पर बैठे हैं ताकि लोग बोले प्रभु जी अमृत वाणी नीचे कम बोलते ही सीधे बढ़िया बढ़िया प्रस्तुति करें, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के, यहाँ से ढूंढ के, वहां से ढूंढ के, लोग बोले क्या ज्ञान है प्रभु जी आपको, और क्या भक्ति है आपकी, अमृत वाणी। यस, ये मुझे पहचान गया। तो ये रजोगुणी भक्ति है कि हम भक्ति कर रहे हैं मान प्रतिष्ठा के लिए। सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, पृथक भाव, ये भक्ति हमारी रजोगुणी। और सत्वगुणी भक्ति क्या है? ये सब चीजों के लिए नहीं करते, कम से कम वो रजोगुण इससे अच्छी भगवान को मानकर, भगवान को भगवान मानकर, इन सब चीजों के लिए मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, गलत भावना से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं, ये सत्वगुणी। और निर्गुणी क्या है? जहाँ भगवान का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ जाए। हमारे होता नहीं ना, कितना नाम लेते हैं एक आंसू नहीं टपकता, आते कभी कभी आया
आता है
भगवान कितने दयालु हैं। हाँ, अच्छा कभी कभी आ जाता आप लोग भाग्यवान, हमारे तो आंसू ही नहीं आते, रोज बैठे सोचते जब करे भगवान का नाम ले रहे एक तो आंसू करते
हैं।
प्रेम से, कृष्ण प्रेम से नहीं आता, कृष्ण प्रेम से नहीं आता।
किया था कि भगवान
देखो
कितना सुंदर है, वो ऐसे
हैं,
तो ऐसे।
हाँ, तब आंखों में आंसू आ गए थे आप लोगों के। ठीक है। कैसे थे, झूठे थे, सच्चे थे, सच्चे थे, ये तो भाव है। आप लोग पीछे स्तर के पड़े, हम अपनी बात कर रहे थे, क्षमा चाहिए, हमारे तो आंखों में आंसू ही नहीं आते, जब करते हो सोलह वाला रोज हो रहा है, एकादशी पे ज्यादा हो रहा है, कोई कोई भाव ही नहीं है कि प्रेम आ जाए, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, कुछ नहीं होता, आंसू बिल्कुल नहीं आते, है ना। तो वो भक्ति क्या है, श्रुता भगवान का नाम सुनते ही जहाँ उनके प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, वो गुणों के परे भक्ति है। तो इस तरह में भक्ति नहीं हमें संभालना चाहिए, भक्ति करते हुए गलत उद्देश्य से भक्ति करेंगे तो फिर उसका लाभ ठीक से नहीं मिलेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी दिन तक होना ही था, हो ही नहीं सकता, एक दिन भी ऐसा क्या हो ही नहीं सकता। और जब हमने पहले दिन ही घोषणा की थी कि ऐसा होगा, देखिए भगवान मुझे तो हमारी भक्ति में उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। किसी भी कार्य को उसका उद्देश्य अच्छा या बुरा बनाता है, कार्य अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन उसका उद्देश्य उसको बुरा या अच्छा बनाता है। तो हमारा जब अपने आप में ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है, हम जब कर रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण छोड़ना नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना मेरा अपमान किया, हरे कृष्ण क्या मिल रहा है आपको, उद्देश्य गलत है, आप भक्ति कर रहे हो तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण के सामने आकर कहना चाहिए कृष्ण प्लीज बी प्लीज बाय माई एंडेवर, हमारे प्रयास से आप प्रसन्न हो जाएंगे बस। तो ये हमारे प्रार्थना होनी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़िए।
भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद से प्रति अर्थात योग आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि वो वर्ष इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है।
आपके पुण्य कृतां लोकां चित्वा शाश्वते स्मः शुचिनां श्रीमदांगे योग दृष्टो विजायते। पहले प्रभुपाद ने बताया कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, फिर कार्य नहीं करता तो उसका योग भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी भगवान ऐसी सुविधा देते हैं कि जिसने थोड़ी भी भक्ति की है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, थोड़ी भी भक्ति कर ली है तो भगवान उसको एक और अवसर कहाँ देते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे, अच्छे कुल में जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ उसको सुविधा है, लेकिन अगर वो सुविधा का उपयोग नहीं करता तो फिर उसको पतन, फिर से नुकसान होता है। आगे बढ़े।
विधि विधान ऐसे हैं कि जो इनका पालन करता है।
तो मुझे लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि बाहर से सुविधा दी, उनको अच्छा घर अच्छा परिवार दिया और सारी फैसिलिटीज दी, तो अंदर से भी तो प्रेरणा देते होंगे ना, तो फिर वो कैसे विफल हो जाता है।
अंदर से तो प्रेरणा सबको देते हैं, केवल जिसको बाहरी सुविधा नहीं, जिसको नहीं दी है उसको भी देते हैं, लेकिन वो विपत्ति इसलिए हो जाता है क्योंकि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। सुविधाएं मिली हैं, हम सबको भी सुविधाएं मिली हैं, और हमने अपनी सुविधा, अपनी जो सुविधा मिली और जो स्वतंत्रता मिली उसका उपयोग किया। तो भगवान ये देते हैं और सुविधा भी देते हैं, इसका अलग अलग है। प्रभुपाद छठे अध्याय में भगवद्गीता में लिखते हैं जो कुछ योगी होते हैं जो थोड़े समय कर भ्रष्ट हो जाते हैं, कुछ समय होते हैं कुछ योगी होते हैं लंबे समय तक करके फिर उनका योग भ्रष्ट होता है। तो जो थोड़े समय में योग करके भ्रष्ट हो जाते हैं उनके लिए ये है कि उनको सुविधा मिलती है, कभी कभी उस सुविधा में भटक जाते हैं, लेकिन जो लंबे समय के लिए योग करके जाते हैं, प्रभुपाद उन तात्पर्यों में अपना और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि हमारा जन्म अच्छे वैष्णव कुल में हुआ, अच्छे परिवार में हुआ, भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर का कहते हैं कि अच्छे में हुआ जिससे हम आगे भक्ति कर सकें। तो इसलिए वो जो कहा गया वो उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत योग नहीं किया, सुविधा मिल गई मगर क्योंकि अभी परिपक्व नहीं हुए तो सुविधाओं में बह जाते हैं, ठीक है।
विधि विधान ऐसे हैं कि जो इनका पालन करता है वैसे काम करना किस तरह से उन्नति कर दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। अनेकानेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है
तो यहाँ ये कर्म कांड ज्ञान कांड ये जो हम लोग शुरुआत में चर्चा कर रहे थे वो प्रभुपाद कर रहा है कि पहले कर्म कांड कर लेता है ज्ञान कर लेता है
तभी वह पूर्ण बनता है। यह सामान्य प्रक्रिया है किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है जैसे कि इस मंत्र में संतुति की गई है तो वह भक्तिमयी प्रवृत्ति ग्रहण करते ही समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। जैसा कि भगवद गीता 18:65 में कहा गया है भगवान तुरंत ऐसे शरणागत जीव का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर देते हैं।
कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान बोलते हैं जब आप अपने साधारण धर्मों को त्यागते हो तो पाप लगता है। जैसे जब कोई ब्रह्मचारी बनता है तो लोग बोलते हैं माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं। आप लोगों में से जिनके लड़के हैं ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं आप लोगों ने बात बन ली है। वैसे लोग बनाना नहीं चाहते वो अलग बात है, इच्छा नहीं रहती है, लेकिन ब्रह्मचारी बनते हैं तो उनको कहा जाता है कि माता पिता की सेवा त्याग दी इसने धर्म, तो भगवान कहते जरूर सही है पाप लगेगा। पाप लगता है माता पिता की सेवा नहीं करे। शास्त्रों में कहा गया जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उसको नरक में जाना पड़ता है, हजारों साल तक उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो जिस बालक ने अपने माता पिता की सेवा छोड़ दी तो फिर उसके लिए क्या है? भगवान कहते निश्चित पाप लगेगा। अहम तो हम सर्व पाप मोक्षिष्यामी मां सूचा, मैं छूट दे रहा हूँ, मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें पाप लगा। भगवान ने ये नहीं, भगवान ने ये शब्द क्यों यूज किया कि सर्वधर्म में ये क्यों कहा कि अहम तुम सर्व पाप भ्यो? तो आप जब समर्पण कर रहे हो तो पाप कहाँ से आ गया? पाप आ गया क्योंकि अपने साधारण कर्तव्यों को त्याग रहे हो आप, लेकिन साधारण कर्तव्य को ऊंचे कर्तव्य के लिए त्याग रहे हो इसलिए भगवान पापों को हटा लेते हैं। अहम तो हम कितनी गारंटी दे रहे हैं भगवान कि चिंता क्यों कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ ना। जब हमारे पास दो कर्तव्य होते हैं ऊंचा और ऊंचा तो हमें ऊंचा कर्तव्य चुनना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कई बार उदाहरण दिया कि एक सैनिक है घर में छुट्टी पे आया हुआ है, अब कल उसकी लड़की की शादी है, उसको कन्यादान करना है, पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कर्तव्य है कन्यादान करना, और उसको आज एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि युद्ध छिड़ गया, 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट करो अपनी यूनिट में। तो अब उसके लिए दोनों कर्तव्य है ना, यहाँ पिता का कर्तव्य निभाना है, कैसे होगा कल लड़की की शादी अगर चले जाएंगे, और वहाँ उनको देश की रक्षा करनी तो क्या करेगा पिता, क्या करना चाहिए? नोटिस भेज देना चाहिए कि बीमार हूँ इत्यादि नहीं आ सकता, देश की रक्षा साधारण है, देश की रक्षा करेगा। तो उसको अपने छोटे कर्तव्य को त्यागना पड़ेगा, अपना जो अपनी पुत्री के प्रति या परिवार के प्रति कर्तव्य उसको त्यागना पड़ेगा ताकि ऊंचे कर्तव्य को वो बना सके। तो इसी तरह जब कोई भगवान की शरण जाते हैं तो भगवान कहते हैं तुम्हें पाप लगेगा लेकिन अहम तो आप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा। जैसे कल हम लोग चर्चा करें तो गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्ता, जब हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण है ना देवताओं के ऋषियों के, तो भगवान क्या कहते हैं, कहा गया चार श्लोक में देवऋषि धूता तृणाम पितृणाम न किं करो नाय प्रणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तुम्। बस इतने सारे ऋण है हमारे ऊपर देवताओं का ऋषि मुनियों का अन्य जीवों का पितरों का, इतने सारे पैदा होते ही ऋण हो जाते हैं। देखिए लोग लेकर पैदा होते हैं, हम लोग जन्म लेते इतने सारे लोग, तो कैसे चुकाया जाएगा? देवताओं का ऋण यज्ञ करके चुकाया जाता है, ऋषियों का ऋण शास्त्र पढ़कर चुकाया जाता है, पितरों का ऋण श्राद्ध करके चुकाया जाता है। तो ये सब करते रहेंगे तो क्या होगा, जीवन भर इसी में निकल जाएगा। इसीलिए सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम्। अगर भगवान मुकुंद की शरण ले ले तो कोई ऋण नहीं रह जाता है, भगवान से लोन भगवान चुकाएंगे, सही है ना। जैसे आपने किससे लोन लिया, अब कोई आपको अपनी शरण में ले लेता है कि आज से तुम मेरे अधीन जो भी है, तो फिर सारा लोन उसको ट्रांसफर हो जाता है ना, फिर वो लोन चुकाएगा। जब हम भगवान की शरण ले ले तो भगवान चुकाएंगे हमारा लोन, और चुकाते भी हैं। इसलिए कहते डरो ना हम तो हम सर्व पापे, तो सारे पापों से मुक्त करना मतलब बोल रहे मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो आज। आगे बढ़े।
कर्मकारी में नेक पाप नहीं है।
ठीक है। माता जी है फिर बाद में पूछिए। ओके, जो गृहस्थ है उनके लिए क्या सैफरन का? हाँ, नियम ये है कि उनको गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ में जाना होगा, फिर वानप्रस्थ जीवन के बाद गुरु की अनुमति से अगर चाहे तो संन्यास ले सकते हैं। हमारे कई सन्यासी पहले गृहस्थ थे, ऐसा नहीं है कि वो लोग गृहस्थ नहीं थे, जितने भी सन्यासी उनमें से कई सन्यासी गृहस्थ थे। और सबसे छोटा गृहस्थ जीवन तमाल कृष्ण महाराज का था, कुछ ही दिन की शादी। तो कई कई हमारे जो सन्यासी इस समय वो गृहस्थ थे, तो आज भी हो सकता है, लेकिन आज वो गृहस्थों में वो रुचि नहीं रह गई है कि बाहर आने की। वो सोचते हम तो गृहस्थ हैं, माया में हैं, प्रभु जी हम यहीं ठीक हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी, आपको वानप्रस्थ लेना होगा, वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास की तैयारी। और संन्यास नहीं भी हो तो हमने देखा कुछ स्थानों में वानप्रस्थ में भी ये दिया जाता है, लेकिन उसके लिए पूर्ण रूप से, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये वैराग्य, जो रंग है वैराग्य का लक्षण। वैराग्य मतलब आपने अपनी सारी इच्छाओं को जला दिया, तब आप ये ग्रहण कर सकते हैं। जैसे सरस्वती देवी ने अपनी अपने आप को अग्नि में जलाने से पहले भगवे वस्त्र धारण किए थे, भागवत में वर्णन था। तो उस समय दक्ष के यज्ञ में सबके सामने, तो ये दिखलाने के लिए कि जो भगवे वस्त्र हैं ये, फिर आपने अगर सारी इच्छाओं को जला दिया अपने हृदय की, कोई आसक्ति नहीं है परिवार से, धन से इत्यादि, तब आप ग्रहण कर सकते हैं। तो समझते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें हमें हमेशा एक उदाहरण चाहिए होते हैं, फिर सबको इच्छा होती है। वैसे सही दृष्टि में अगर हमें भगवान ने सुविधा दी है और हमें आवश्यकता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जीवन भर वही चलता है। हम सोचते हैं भक्ति यही है, सुबह मंदिर जाओ, थोड़ा सा जप कर लो, जीवन फिर पूरा टाइम पैसा कमाओ, बिजनेस में लगे रहो, प्रभु को कहा जाए ये हो रहा है, अगर प्रभु जी बहुत व्यस्त है नहीं हो सकता, और ऐसे ही जीवन निकल जाए। नहीं, भक्तों का जीवन ऐसे होना चाहिए कि जब तक आवश्यकता है, ठीक है अपने कर्तव्य हैं इत्यादि हैं, पारिवारिक कर्तव्य या धन, लेकिन जिस समय सुविधा हो उस समय आवश्यकता नहीं है बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में लगे रहने की। हमें दुनिया से कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन में भी अंबानी बनूंगा, एक दिन में भी ये बनूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जितना दिया बहुत, प्रभुपाद कहते हैं अगर आपके पास थोड़ी सी भूमि है, एक गाय है, छोटा सा घर है, और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन हम उस जीवन के लिए तैयार नहीं है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इतना अच्छा होगा आराम से रहने के लिए, तैयार करना नहीं चाहते। आज भी अगर हमें सुविधा होगी वो तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो बहुत अच्छा है, कम से कम आपके हृदय में भावना तो आई, और आपके कारण और भी लोगों ने आएगी निश्चित। तो हो सकता है अगली बार जब हम आए तो केवल एक व्यक्ति से आग्रह नहीं आगे।
भगवान के सारे शुभ गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में क्या कहा जाए? भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है।
ये भक्ति करने से सारे ब्राह्मण के गुण आ जाते, कहा लिखा है कुछ लोग याद रखो, सर्वे सारे आगे।
भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में ना हुआ हो, ऐसा है भगवान का सामर्थ्य है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे व्यक्ति को निम्न कुल जन्म चांडाल बना सकते हैं, और चांडाल को भक्ति में सेवा के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। चूँकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में स्थित है, अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिससे वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं भले ही वह कुछ अन्य चीज की इच्छा कर रहा हो। जहाँ तक कन्या का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर अनुमति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवत 11.5.42 में कहा गया है, सब पाद मूलम
सुपाद मूलम भजतव्यस्य यत्तान्निवारस्य हरिः हरेशम्
भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त को अत्यधिक भगवान को अत्यधिक प्रिय है।
गलती भी हो जाए तो भगवान ठीक करते हैं, ज्यादा चिंता नहीं करते रहना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। हाँ, गलतियां भी करते रहना चाहिए, नहीं कभी कभी हो जाए तो भगवान ठीक करते रहे। यस,
ईश्वर ने इसके इस मंत्र में भक्त भगवान की प्रार्थना करता है कि वे उनके हृदय में भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है, बुद्धिजीव प्राय त्रुटि करता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमलों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनके बचने हेतु मार्गदर्शन करते हैं। भगवान पूर्ण शरणागत का भाग अपने ऊपर ले लेते हैं। इस तरह से सारी समझ भगवान के शरण में ग्रहण करने एवं उनके निर्देश अनुसार कार्य करने मात्र ही हल होता है।
भगवान कब सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं? शरणागत हो जाते हैं, ये सारे रीति रिवाज इत्यादि उनको छोड़कर सीधे भगवान की जो शरण चला जाता है, भगवान उसका जीवन का कंप्लीट चार्ज ले लेते हैं। फिर जो होता है उसके जीवन में वो भगवान की इच्छा। हमारे जीवन में हम तो बोल देते हैं रोज ही मंदिर आइए, भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे, है ना? ऐसे कहते ना हम लोग, कोई किसी को बोलते भगवान की इच्छा हो, भगवान क्यों इच्छा करेंगे आपके? आप कौन से बड़े महान भक्त हो जो भगवान आपके लिए इच्छा करेंगे? मंदिर को आते नहीं, भक्ति करते नहीं, भगवान इच्छा करेंगे आपके लिए? तो भगवान उस व्यक्ति के चार्ज में थे। जैसे परीक्षित महाराज गए, पानी मांगा, पानी नहीं दिया तो मरा हुआ सांप उठा के गले में डाल दिया। आप में से कोई करेगा बताइए? कोई करेगा? आप कभी जाएं किसी मंदिर में, कोई ब्रह्मचारी बैठे जप कर रहे हैं, आप बंद करके जप कर रहे, बड़े ध्यान से आप बोलते हो पानी चाहिए, वो नहीं दे तो उठा के सांप डाल दो, कुछ भी डाल दो, रस्सी पड़ी होगी, गंदगी पड़ी होगी। तो जब हम नहीं करेंगे परीक्षित कैसे कर लिया? इतने महान भक्त स्वाभाविक है, प्रश्न आता है कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे, परीक्षित महाराज ने कर दिया। इतने महान भक्त जिनको बचपन में, बचपन नहीं गर्भ में दर्शन हुए भगवान के, बचपन से वो खेल रहे हैं भगवान की गुड़िया से, भगवान के नाम से, भगवान के लीला में, इतने महान भक्त तो कैसे हो गया? भगवान की इच्छा, उनका चार्ज भगवान ने ले रखा है। भगवान चाहते थे भागवत प्रकट हो, इसलिए भगवान ने इस लीला को किया। तो हमारे जीवन में जो भी होता है उसके दो ही कारण हैं, एक हमारे कर्म जो हम कर्मों का फल भुगत रहे हैं, और दूसरा भगवान की इच्छा। और दोनों अवस्थाओं में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, स्वीकार करना पड़ता है। और कभी कभी हम लोग इस, और ज्यादातर हम लोगों के जीवन में जो होता है वो क्या है? कर्म है, भगवान की इच्छा नहीं है, ये मान लीजिए। अभी इतने शुद्ध नहीं हुए कि भगवान सीधे हमारे जीवन का चार्ज लेंगे, लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं, कुछ कुछ होता भी है। भगवान की इच्छा कैसे होती है? हम लोग भक्ति में नहीं आ रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, भगवान सारी योजना बनाकर हमको लेकर आते हैं। आप अगर अपना जीवन देखिए भक्ति में आप कैसे आए, तो भगवान ने वो योजना बनाई थी, है ना? अब आपको पता चलता है, उस समय नहीं पता चलता, अचानक अच्छा चल रहा था जीवन में, कुछ हो गया, कष्ट तकलीफ आई, आपने सोचा भगवान को जाकर प्रार्थना करते, इतने में एक भक्त आ गया, बोले बुक ले लीजिए आप, या मंदिर आइए, प्रोग्राम है में, जहाँ पे भी आप चले आए, क्योंकि बड़े दुखी थे, तो चलो कुछ तो सुने, और फिर सुना, बड़ा आनंद आया, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, राइट? कहीं ना कहीं भगवान ने सारी व्यवस्था की। अगर आप यहाँ नहीं आते, इस कॉलोनी में नहीं आते, आप इसको नहीं मिलते, फिर कहाँ से भगवान आपकी योजना बनाते हैं? देखिए, ये मत सोचिए कि अभी की ये भगवान ने, पीछे जाइए, अगर आप ये नहीं करते तो इनके संपर्क में नहीं आते और ये नहीं होता, अगर आपके जीवन में ये नहीं होता तो ये नहीं होता। भगवान कहाँ से योजना बनाना शुरू कर देते हैं आपको लाने के लिए? अभी से नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म कहीं पर हुआ, फिर किसी कारण से उसको छोड़कर जाना पड़ा, उसको बड़ा दुख होता है कि अरे मेरे को ये छोड़कर जाना पड़ा। फिर वहां जाता है, वहां सेटल होने का प्रयास करता है, भक्तों से मिलता है, संपर्क में आ जाता है, भक्ति करने लगता है। भगवान ने कहां से योजना बनाई, जहां आप रह रहे थे वहां आपका बिजनेस खराब किया ताकि आप यहाँ आए, राइट? नहीं आएंगे तो मिलते नहीं। तो कितनी भगवान योजना बनाते हैं कि कहां से ये भक्त आ जाए, और हम योजना बनाते हैं कि हम भगवान के पास जा जाए। ये हमारी योजना, हमने प्रण लिया हुआ है, भगवान ने प्रण लिया इस जीव को मैं लेकर आऊंगा, और हमने प्रण लिया मैं नहीं जाऊंगा। यही संघर्ष है।
ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार के दो प्रकार से दी जाते हैं। पहला,
ये आपके प्रश्न का एक उत्तर है, ध्यान से पढ़िए। भगवान के ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि भगवान किस तरह से दो तरह से जीव को उपदेश देते हैं। हाँ जी पढ़िए।
पहला साधु शास्त्रों तथा गुरु के द्वारा तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा, जो हर एक के हृदय में निवास करते हैं। हर इस तरह वैदिक ज्ञान में प्रबद्ध भक्त सभी प्रकार के सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अंतर संसार के शैक्षणिक पद्धतियों से नहीं समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। यस्य देवो परा भक्ति अर्थात देवे तथा गुरु। यदि मनुष्य प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः पतन की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह से चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुँचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत दिया गया है, और श्रीमद् भागवतम 1.2.17.20 में इसकी व्याख्या हुई है।
कौन से श्लोक है 1.2.17-20 तक? श्रृण्वतां सकृतः कृष्ण पुण्यां श्रवण कीर्तनम् हृदयं तस्मै भद्राणि विधुनोति सुहृत्सुखम्। कैसे श्लोकों से तदारणस्तम भागो इत्यादि। ठीक है, आगे पढ़िए। अंतिम पैराग्राफ आपके इस बुक का। जय हो।
भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त देवों के हितैषी हैं। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है, और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में रावण गुण आ जाते हैं, और प्रकृति के अधर्म गुणों रजो तथा तमो का प्रभाव पूर्णतः लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्तिमय सेवा के पद पर पूर्णतः प्रभुत हो जाता है, और इस प्रकार वह भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो जो सारे संशय घट जाते हैं, क्यों क्यों वह शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईश्वर परिषद के भक्ति विदान पूर्ण हो जाए।
आप सबकी आपने महान कार्य किया, उपनिषद पढ़ लिए। ये तो साधुओं का काम है, ऋषि मुनियों का काम है, और आप लोग बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बड़ा अच्छा लगा। और अब एक छोटी सी आपके लिए एक्सरसाइज है, जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे तब तक आपके लिए हम एग्जाम कैसे देना है उसकी तैयारी करवा देंगे यहाँ पर। तब तक एक छोटी सी एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए हम चाहते हैं। अभी हमने सारा ईश्वर उपनिषद पढ़ लिया, भक्ति करनी है सब हो गया, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हो गया। अब आपको अपने जीवन के लिए एक एक्शन प्लान लिखना है। एक्शन प्लान समझते हैं, आगे क्या करना है, एक योजना। तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं, 3-3, 4-4 के ग्रुप बनाकर आप, क्योंकि इससे ज़रा अच्छा होता है। उसमें क्या क्या होना है, पहली चीज होनी है कि आपको देखना है कि हमारी क्या कमियां हैं भक्ति में, और प्रयास कीजिए प्रामाणिक तौर से देखें, मतलब ऐसा नहीं कि अरे इसको बताएंगे इसको पता चल जाएगा मेरी इतनी कमी है, कोई बात नहीं पता चलने दीजिए बहुत। हाँ ऐसी कोई कमी हो जो आप नहीं बताना चाहते वो अलग बात है, कोई बहुत पर्सनल कमी है लेकिन वैसे बताइए। देखिए पहली चीज की तो तीन चीजें आपको इसमें लिखनी है सेक्शन प्लान में। पहली चीज हमारी क्या कमियां हैं, क्या चीजें कम हो रही हैं, और या आप उसी संबंध में इत्यादि, और उन कमियों के कारण दूसरे चीज कहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा फेलियर हो रहा है या हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिन कमियों के कारण क्या प्रभाव हो रहा है। जैसे हमारे अंदर ये कमी, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे अंदर कमी है कि हम तुरंत कुछ भी बोल देते हैं, राइट, ये कमी है, तो उसके कारण क्या हो रहा है। दूसरा चीज मेरे संबंध खराब हो रहे हैं, लोगों से मतभेद हो जाते हैं इत्यादि, और तीसरा उसको ठीक करने के लिए क्या योजना कर सकते हैं, तो कैसे हम क्या हमारे लिए सफलता होनी चाहिए कि इन जो फेलियर्स हमारे हो रहे हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तीन चीजें आपको चर्चा करनी है, तो आप ग्रुप में करें ज्यादा अच्छा होगा, अकेले करेंगे तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो कृपया अभी आपको 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में चर्चा तुरंत कीजिए। भक्ति ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य, और कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं है, ये बताया। अगर आप पुण्य करने की इच्छा करते हो भक्ति करो, और कुछ पुण्य करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका समय शुरू हो गया, 5 मिनट आप लोग इसमें शुरू कीजिए। प्रतीक ओम शांति 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 धीरे धीरे
Thank you. Thank you.
आप लोगों को और समय चाहिए कि हो गया? तो बात क्यों कर रहे हैं सर? अब के कितना अच्छा लग रहा था, इतनी सारी हंगामा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, तो आप लोगों ने चर्चा कर ली। अभी ऐसा है कि समय थोड़ा कम है, या तो हम लोग अभी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, या जो आपने अभी चर्चा की है ठीक है। तो फिर ये एक्शन प्लान का क्या होगा, इतने डिस्कस कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, कोई चिंता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण एक्शन प्लान है कि एग्जाम कैसे पास हो। ओके ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको हम जो आपका क्लोज बुक एग्जाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको हाँ ओपन बुक का डिटेल बताएं। ठीक है, दोनों में से कुछ मार्क्स ज्यादा ओपन बुक में आने हैं, लेकिन फिर भी पहले अभी आपका तुरंत अच्छा, आपका एग्जाम 10 तारीख को होगा, रविवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे, 10 बजे से 1 बजे तक, 10 तारीख को संडे है, रविवार है। हाँ जी, चीटिंग, मोबाइल, लैपटॉप, बैग सब कुछ बाहर रख रहे हैं, और उस दिन सिक्योरिटी वाले को बुलाया जाएगा, वो चेकिंग करेगा सारा, कहीं पर कोई चरखा तो नहीं है, केवल पेन लेकर आना है बस। पेपर भी यहाँ से दिए जाएंगे आपको, पेपर भी सर यहीं से, एग्जाम पेपर भी, और आप पैड ले आइएगा बस उससे, और पैड के पीछे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जाम में एग्जामिनर कौन है? बाहर से आए, एक्सटर्नल, ठीक है, इसको जरा जल्दी जल्दी कर लें। हाँ जी, आप हमसे बाद में मिलिए। तो जो लोग पेपर लीक करवाना चाहते हैं वो हमसे मिले, थोड़ी घूस लेकर साथ में अच्छी खासी, उसके बाद देखा जाएगा। ओके, आपको जो प्रश्न पेपर है उस पर आप देखना शुरू कीजिए। आपको हम बता रहे हैं ये हम भेजेंगे नहीं आपको, सॉफ्ट कॉपी आपको अपने आप लिखना है, क्योंकि जनरली बाहर दिया नहीं जाता है, बट आप लोगों के उत्साह को देखकर हमने सोचा ठीक है दे देते हैं। तो ये जो हम अभी बता रहे हैं ये आपको प्रश्न बताएंगे, और कौन से पेज पर हो, जो हिंदी की बुक है ना नीली वाली, ये जो आप सबकी है, ये इसके पेज नंबर्स हैं, क्योंकि कई पुरानी बुक होंगी तो उस पे पेज नंबर डिफर हो जाते हैं। नहीं, ये ईशोपनिषद के कौन से पेज पर उत्तर दिया गया है इस प्रश्न का, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके सारे 78 प्रश्न, तो तुरंत रेडी हो जाएंगे। वो फाइन कर लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। फाइन कर लिया ऑलरेडी, आप सब माता जी से मिलिएगा, जिनको चाहिए वो सबको बताएंगे और नहीं बताए ठीक है। नेक्स्ट कभी हम लोग ओपन बुक का चर्चा करें। आप खड़े हो तो सब लोग देख ले आप। ओके ठीक है, तो पहला हम प्रश्न, और अच्छा हम जब बोलते जाएंगे बीच में आप लोग हमें रोकिएगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में इसको खत्म करना है, 5-7 मिनट में। तो हम केवल बताएंगे प्रश्न नंबर और पेज नंबर, वैसे यहाँ भी है और हम बताते भी जाएंगे, आप केवल उसके आगे लिखते जाइए। आपके जो पेपर है प्रश्न पेपर, साइलेंट प्लीज, शांति, जो पेपर है उसके आगे लिखते जाइए पेज नंबर, ठीक है। तो हम फिर उसके बाद ये सारे 78 को हो जाएगा। तो ये क्यों बता रहे हैं कि हो सकता है आपने कोई प्रश्न का उत्तर लिया हो लेकिन वो उत्तर हमें नहीं चाहिए, जो हमें उत्तर चाहिए उस पेज पर होगा, तो इसीलिए आपको वही उत्तर देना है। और ज्यादातर हम लोग एग्जाम में जब करेक्शन करते हैं तो पूरा पूरा नहीं पढ़ते, पॉइंट्स पढ़ते, पॉइंट्स आए कि नहीं आए। आप अगर रामायण महाभारत लिखेंगे कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाले, पॉइंट्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये प्रारंभ कर रहे हैं, बीच में मत रोकिएगा, प्रभु जी एक मिनट, दूसरे का क्या, पांचवें का क्या, अगर आपने नहीं सुना किसी और से लिख के ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हमें मत रोकिएगा 5 मिनट के। प्रश्न नंबर 1 पेज नंबर 6। अच्छा इसमें वो जो रोमन उसमें लिखे हुए हैं ना वो अलग हैं, इसमें जैसे आपकी हिंदी में रोमन है और वैसे नॉर्मल लिखे गए हैं, तो ये पेज नंबर 6 पर है, रोमन पे नहीं। हाँ प्रश्न नंबर 2 ये 11th and 14th रोमन में, 11th and 14th रोमन में। प्रश्न नंबर 3 ये 7th और 8th रोमन में, क्योंकि ये सब इंट्रोडक्शन से। प्रश्न नंबर 4 10th और 11th रोमन में और 14th, तीन पेजों से इसको लेना है। प्रश्न नंबर 5 10th रोमन में, अभी रोमन समाप्त हो गया, अब जो भी कहेंगे वो नॉर्मल होंगे। प्रश्न नंबर 6 के लिए हमने आपको एक चार्ट दिखाया था, अगर आपको याद हो कौन सा प्रश्न क्या आपका। हाँ प्रश्न क्या है, पूर्णता का है ना। ओके तो पूर्णता के लिए हमने आपको ये चार्ट दिखाया था ना, पूर्ण पूर्ण आइए वाला, ठीक है। तो ये उसका उत्तर है, इसको ऐसे समझाना है आपको, याद रहेगा नहीं, आप साधारण लिख दीजिए, चार्ट बनाइए कोई प्रॉब्लम, चार्ट भी बना लेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी बनाया लिख दिया तो भी ठीक है। ये पॉइंट्स आने चाहिए सारे, ठीक है। ओके ये कौन से प्रश्न का है, 6। ओके आगे बढ़े, प्रश्न 7 पेज नंबर 3, प्रश्न 8 ये हमने एक आपको स्लाइड दिखाई थी, 8 क्या प्रश्न है। हाँ तो ईश स्तुति इस बात का खंडन करती है, वैसे यहाँ जो है ये विस्तार में है, जो नीचे लिखे गए ईश स्तुति निम्नलिखित वाक्यों को परास्त करती है, ये चार चीजें हैं ये आपको देने हैं, ठीक है। ये उत्तर है उसका, भगवान का रूप नहीं है, भगवान की शक्तियां नहीं है, जीव भगवान है, भव्य जगत मिथ्या है। ओके थैंक यू। ओके सो 8वां नंबर हो गया, सॉरी का हाँ 9वां। 9 में क्या है, मंत्र 1 में दिए गए सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, जब मैं आपको स्लाइड से दिखाया था नहीं, मंत्र 1 क्या सिद्धांत है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचनाम जगत्याम जगत, ये है वो, ये सिद्धांत है ईशावास्य सिद्धांत, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी जा रहे समझा नहीं रहे, तो सब समझा चुके आपको पूरी प्रभु जी, ये क्या है वो क्या, ये सिद्धांत है जो समझाया था कि भगवान का जीव का और हमारे लिए जो चेतावनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पेज नंबर 11 इसमें ऐसे ही प्रश्न है, इसीलिए आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आगे चलते जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 पेज नंबर 9, प्रश्न नंबर 13 पेज नंबर 5, प्रश्न नंबर 14 पेज नंबर 10, प्रश्न नंबर 15 पेज नंबर 9, प्रश्न नंबर 16 पेज नंबर 6। आपको खाली बस जो हम पेज नंबर बता रहे वही आगे लिखते जाना, प्रश्न नंबर तो ऑलरेडी है। प्रश्न नंबर 17 पेज नंबर 12, प्रश्न नंबर 18 पेज नंबर 17। हमें बड़ा अजीब लगा, मतलब हम क्या हो रहा है कि पहले आपको बता दें कि ये प्रश्न आएंगे, उसके बाद उसका उत्तर कहाँ है वो बता दें, अब बस खाली लिखना बाकी है। अब हमने कहा आपको ये कह के प्लीज आप ही लिख दो, हमारे एग्जाम भी आप ही दे दो, बच्चा क्या है। इतनी तैयारी तो शायद कहीं नहीं करा था। हाँ एग्जाम में पेज नंबर मत लिखिएगा, पेज नंबर है और उतने आप पढ़ लीजिए, तो फिर हम भी नंबर ऐसे ही देंगे कि आप अपने आप समझ लीजिए, मतलब जीरो है उसके आगे आप अपने आप समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 17 पेज नंबर 12, प्रश्न 18 पेज नंबर 17, प्रश्न नंबर 19 पेज नंबर 19, प्रश्न नंबर 20 पेज नंबर 15, प्रश्न नंबर 21 पेज नंबर 18, प्रश्न नंबर 22 पेज नंबर 19 और प्रश्न नंबर 23 आगे। ओके प्रश्न नंबर 23 पेज नंबर 15, प्रश्न नंबर 24 पेज नंबर 17, प्रश्न नंबर 25 तार्किक विकास क्रम को दर्शाते हुए ईश स्तुति से मंत्र 3 तक के पहले खंड का अवलोकन संक्षेप में कीजिए। तो हम लोगों ने विभाग बनाए थे ना, वो याद है आपको शुरुआत में, तो क्या कैसे मंत्र 1, 2, 3 होता है, तो उसको ले लें। ये जो प्रश्न है कि ईश स्तुति से आपके इसमें मंत्र 1 लिखा है, दरअसल वो मंत्र 3 तक है, पहले खंड का अवलोकन, तो मंत्र 3 को ठीक है, वो आपको अपने हिसाब से देना है। विभाग विभाग, पहला विभाग, दूसरा विभाग, खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े करना। हाँ जी, हमें पहले कहा था कि आप लोग बार बार मत पूछिएगा, नहीं उसमें स्लाइड नहीं है, वो आपको हमने पहले बताया था विभाग कौन कौन से, वो वाली स्लाइड नहीं है। प्रश्न 26 पेज नंबर 23, प्रश्न 27 पेज नंबर 24, प्रश्न 28 भगवान चलते हैं नहीं चलते हैं, ये कौन सी स्लाइड हमने दिखाई थी आपको, तदे जति तन्ने जति तदूरे तदंति के, की कौन सी स्लाइड थी, याद है किसी को क्या था उसमें? ये आपको दिखाना ठीक है, वो तो बना ले दिखाएंगे, मतलब समझाना है आपको कैसे क्या है, ये तो चित्र याद रखेंगे तो समझा सकते हैं ना, दिखाएंगे ना, मेरे को फोटो खींच के लगा देनी है ठीक है, ये समझ में है ना आपको सब क्या क्या है, तदे जति तन्ने जति तदूरे तदंति के तदंतरस्य सर्वस्य तं सर्वस्य वायवः। ओके आप लोग बुद्धिमान है। प्रश्न नंबर 29 पेज नंबर 26, प्रश्न नंबर 30 पेज नंबर 24, प्रश्न नंबर 31 पेज नंबर 90, ओके पेज नंबर 25, प्रश्न नंबर 32 पेज नंबर 23, प्रश्न नंबर 33 पेज नंबर क्या बोलते हैं इसको 38 और 40, पेज नंबर 34 और सॉरी प्रश्न नंबर 34 पेज नंबर 34, प्रश्न नंबर 35 पेज नंबर 33 33, प्रश्न नंबर 36 पेज नंबर 36 36, पेज नंबर प्रश्न 37 पेज नंबर 34 34, पेज प्रश्न नंबर 38 38 पेज नंबर 45, प्रश्न नंबर 39 पेज नंबर 44 ठीक है, बाकी का आप लोग कर लीजिएगा, नहीं मिले तो नहीं हो तो मर्जी से ठीक है। और बताएं कि हो गया प्रश्न नंबर 40। हाँ प्रश्न नंबर 40 पेज नंबर 42, प्रश्न 41 पेज नंबर 43, 43 प्रश्न 42 मंत्र 4 से मंत्र 8 के दूसरे खंड का, वो आपको स्लाइड में यह बताया था विवाह कैसे कैसे है, आपको अपने हिसाब से लिखना। प्रश्न 43 वास्तविक प्रश्न पेज नंबर 50, प्रश्न 44 पेज नंबर 55 से 57 तक, प्रश्न 45 पेज नंबर 51, प्रश्न 46 पेज नंबर 51, प्रश्न 47 पेज नंबर 50, प्रश्न 48 पेज नंबर 51 और प्रश्न 49 पेज नंबर 60 और 61, प्रश्न 50 पेज नंबर 58 58, प्रश्न 51 पेज नंबर 50, प्रश्न 52 पेज नंबर 53, प्रश्न 53 पेज नंबर 50, प्रश्न 54 पेज नंबर 59, प्रश्न नंबर 55 पेज नंबर 70, प्रश्न 56 पेज नंबर 65, प्रश्न 57 पेज नंबर 66, 66 लिखा है इंग्लिश में, कैन सी इट हियर, हमें भी एक्चुअली तकलीफ होती है हिंदी बोलने को, सो हम इतनी मेहनत करके बोल रहे हैं हिंदी आप बोल रहे हैं। प्रश्न 58 पेज नंबर 67 पेज नंबर, प्रश्न 59 पेज नंबर 68 68, प्रश्न 60 पेज नंबर 76 76। अब हो गए और बाकी है कुछ तो आप लोग भी कर लो। अच्छा ये हर एक से आशा मत कीजिएगा कि हर एक टीचर आपको ऐसे सिखाएगा, तो आप बोला वो बताइए बोले अरे ये क्या है, तो किसी को बोलिएगा तो मत कैसे उन्हें बताया, अगली बार से आने में देगा। प्रश्न 61 पेज नंबर 80 80, प्रश्न 62 पेज नंबर 86 86, प्रश्न 63 63 पेज नंबर 87, प्रश्न 64 पेज नंबर 90, प्रश्न 65 पेज नंबर 91, प्रश्न 66 पेज नंबर 95, प्रश्न 67 पेज नंबर 68। ये एक्चुअली 12वें मंत्र का प्रश्न है जो 15 में आ गया है, इसीलिए पेज नंबर 75 पर है पीछे वापस, ठीक है 75 ये 12वें मंत्र का। प्रश्न नंबर 69 पेज नंबर 100 100, प्रश्न 70 पेज नंबर 103 103, प्रश्न 71 पेज नंबर 108, प्रश्न 72 पेज नंबर 109, प्रश्न 73 पेज नंबर 118, प्रश्न 74 पेज नंबर 121, प्रश्न 75 पेज नंबर 123, प्रश्न 76 पेज नंबर 123, प्रश्न 77 पेज नंबर 126 126, और आखिरी प्रश्न को आपको अपने आप लिखना। थैंक यू वेरी मच सॉरी कितने क्वेश्चन आएंगे एक्चुअली इसमें प्रश्न को प्रश्न क्वेश्चन का पेपर इधर ही आपका दे रहे आपको नहीं श्लोकों का नंबर चेंज कीजिए उसमें 8 से 9 से 14 है ना, लास्ट वाले में 15 से 18 लिखे आखिरी वाले।
प्रश्न 42 में आपने स्लाइड बोला कौन सा स्लाइड नहीं
होता, हमने सारी चीजें बताई। क्या प्रश्न
4 से 8 के दूसरे खंड का,
वो आपको अपने आप लिखना है। अब लोग चार स्लाइड कैसे जा रहा है, क्या है
कनेक्शन?
शांति शांति शांति, कृपया बात कर दीजिए। अच्छा हाँ, अभी आपको ये बता दे, इसीलिए कह रहे थोड़ा आप शांति रखेंगे तो क्या क्या बताना है बता पाएंगे, नहीं तो हम सब भूल गए। जब आपको प्रश्न आएगा, वैसे यहाँ पे प्रश्न पेपर रेडी है, अगर आप कहें तो थोड़े से दिखा दें, आप झलक आपको दिखा दें, इतना तो मत दीजिए, वो भी दिखा दें, ये दिखा कि नहीं नहीं ट्रोल हम तो कर लेंगे। तो आपके जब प्रश्न होगा और उसके सामने आप मार्क्स देखिएगा कितने हैं। अगर आपको कहा गया कि ईशोपनिषद का वैदिक वृक्ष पर क्या स्थान है, आप मार्क्स देखिए क्या दिया गया, दो मार्क्स, तो क्या लिखेंगे आप? दो लाइन। यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक दो लाइन में लिखते हैं, जो हमने पेज नंबर 6 आपको दिया उसको लिखा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप कोई और प्रश्न आता है, तीन प्रमाणों को सूचीबद्ध कीजिए और एक उदाहरण के साथ विस्तार से समझाइए, सामने मार्क्स देखिए, 10 मार्क्स, दो तीन पेज तो लिख दीजिए, मतलब लगे कि 10 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ऐसे समझ में आया, मार्क्स देखकर आपको देखना है, ऐसा नहीं कि तीन मार्क्स का और आप उस पहले पेज टू पेज लिखे जा रहे हैं, मिलेगा क्या फाइनल 3 मार्क्स, उससे ऊपर तो मिल नहीं सकता। और उस पर इतना लंबा लिखे कि पता चला मेन पॉइंट नहीं लिखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब आपके 3 पेज व्यर्थ हो गए। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। हाँ जी, विभाग वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, उसको एक से दूसरे का संपर्क बताना है, पहले विभाग का नाम लिखना है, जैसे पहले विभाग का नाम है प्रकृति के नियम, और फिर पहले ईश स्तुति में भगवान के बारे में बताया गया है जीव पूर्णता प्राप्त कर सकता है ये बताया गया है, फिर दूसरे श्लोक में जीव को पूर्णता प्राप्त करने के लिए किस सिद्धांत का पालन करना है वो बताया गया, फिर थोड़ा सा उसका वर्णन, फिर जो पालन करते हैं उनका क्या होता है उसका वर्णन, और फिर जो पालन नहीं करते ये कहा जाता है, ऐसे खंड में लिखना, ठीक है। और हर एक खंड का ऐसे ही लिखना, 4, 5, 6 जो भी आएंगे। ऑप्शन
क्या
आएगा, 15 क्वेश्चन में 10 करने हैं। हमने आपको ऑप्शन पहले दे दिया, 78 क्वेश्चन दिए उसमें से 15 आने वाले हैं, अब और क्या चाहिए, बिल्कुल नो ऑप्शन, जो प्रश्न दिए जाएंगे उसका उत्तर लिखना है। हाँ जी, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स, ऐसे भी 100 मार्क्स। और कोई प्रश्न वो बताते हैं, पहले क्लोज बुक के लिए किसी को कोई कुछ और पूछना है कि आगे बढ़े, तुरंत बहुत लेट हो रहा है, जल्दी घूमने। हाँ, 12 से 15 देखेंगे जितने इच्छा होगी, जो 78 क्वेश्चन है सारे इसी में से आएंगे, लेकिन एक दो जो आपने 12 यूनिट किए थे, 23 प्रश्न थे, उनमें से भी एक दो आ सकते हैं, तो वो तो आपकी ऑलरेडी तैयारी हो गई है, वो आप लोग हाँ उसको भी दिखा देते हैं। हम सोच रहे थे समय होता तो उसके जो सही उत्तर है वो आपको यहाँ दिखा देते, फिर आप अपने आप उसमें से लिख सकते थे, लेकिन अभी उतना समय नहीं। आप लोगों ने जो लिखे हैं प्राय में थोड़े बहुत देखे ठीक है, बाकी अब आपको तैयारी, उसमें से एक ही दो प्रश्न आएंगे तो समझ लीजिए, अगर नहीं भी लिखे आपने तो कोई बात नहीं, 80 मार्क्स जो भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रयास कीजिए उनको पढ़ने का। हम रात में आपको राजा चरण प्रोटोकॉल में स्टैंडर्ड आंसर्स भेज देंगे उसके, कि क्या उसमें आशा है, तो आपको फिर वो कभी एक दिन और ऐसे दिखा कर आपको पॉइंट्स बता दें एग्जाम में, ठीक है। आगे बताइए, ऐसे की तैयारी, ओके ठीक है। तो अभी ये आपका क्लोज बुक हो गया, क्लोज बुक में तो केवल 20% मार्क्स मिलने वाले हैं, अगर आपको 100 में से 80 आए तो आपको 16 ही मार्क्स मिलने वाले हैं उसके, और बड़ा जो एग्जाम है वो है ओपन बुक, उसमें 60-65% उसमें से लिया जाएगा, मतलब अगर आपको उसमें से 100 में से 80 आए तो उसमें से 50 मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे, वो 50, फिर इसके 20 मार्क्स, 70, और फिर श्लोकों के 10 मार्क्स, 80, और आपकी अटेंडेंस और आपने कैसा यहाँ पर सहयोग किया उसके 5 मार्क, 85% आपको पूरे मिल गए, थैंक यू, आप सब पास हो गए। हाँ, सर्टिफिकेट प्रिंट करवा रहे हैं, साल 2 साल में आ गए। अच्छा, अच्छा 10 तारीख को आपका एग्जाम है, 15 तारीख तक आपको ओपन बुक का सबमिशन करना है। 15 दिन बाकी है, अभी भी आप वो कर रहे हो, फिर और क्या कह जाएगा। इसको एक ही तारीख 15 दिन दिए है, हमने 10 कहे थे, हमने 5 बढ़ा दिए। आपको याद होगा मैंने कहा जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा उससे 10 दिन, अभी तो 15 कर दिए। आपको खुश होना चाहिए, हमारे यही तकलीफ बस केवल 25-30 दिन होने चाहिए। एक साल भी देंगे तो आप एक होगी, एक साल में कैसे रखेंगे। 15 तारीख को सबमिशन होना चाहिए उसका। हम राधा चंद्र से फोन करके पूछेंगे, अगर 15 को जिसने नहीं दिया है तो फिर उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी आपको कैसे लिखना है वो हमने वैसे बताया था, जिनको अंग्रेजी में चाहिए ये प्रश्न ऐसे के यहाँ पर हैं, उन्हें बाद में ले सकते हैं। तो इसको लिखना कैसे, हमने जैसे आपको पहले बताया था कि एक कोई भी साथ में से आप चुन सकते हैं, जो साथ आपको पास है उसमें से चुन सकते हैं, और अपने तर्क को रखते समय मंत्र तथा तात्पर्य दोनों का प्रयोग करना है। तो मंत्र में जो अनुवाद दिया वो यूज कर सकते हैं, तात्पर्य का यूज कर सकते हैं, आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं या ग्रंथ से उद्भूत कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जैसे जैसा अनुवाद है वैसा भी लिख सकते हैं और उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं समझाने के लिए। लेकिन जब भी आप कहीं से लिखते हैं तो संदर्भ देना चाहिए कि मंत्र 8 से ये कहा गया है, मंत्र 4 से ये कहा गया है, भगवद गीता से ये कहा गया है, इसको आपको लिखना। और फिर सारी चीजों को इंट्रोडक्शन देकर अलग अलग पैराग्राफ्स में उसको बताना। तो हम आपको दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने वही कहा कि पता नहीं क्यों आप लोगों के ऊपर वो नहीं दया वही आप लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, हमें सहन कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर ये भी तो सोच रहे हैं कि मेरी प्रैक्टिस का क्या होगा, अगर सारे ही फेल हो गए हैं दबा किस पर लगेगा। कुछ चिंता हुआ है आपकी चिंता नहीं है। सो हम आपको एक 2-3 ऐसे अलग अलग भगवद गीता के ईशोपनिषद के दिखाते हैं जो हमने लिखे थे जब हमने पद्म शास्त्री किया था या कर रहे थे, पद्म शास्त्री के लिए लिखे थे हम लोग, चाहिए उस समय लिखे थे। तो ये उसमें केवल ये देख के कॉपी नहीं करना है, इसलिए आपको देंगे नहीं ये, केवल देखने के लिए कि कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। लेकिन एक ही नुकसान है, ये इंग्लिश में है समझ आते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी, हमने हिंदी में किया नहीं। तो आपको पहले भगवद गीता का एक दिखाते हैं, एक ऐसे है भगवद गीता में लिखने के लिए हम लोग देते हैं फाइनल जर्नी। फाइनल जर्नी मतलब उसको दिखाया जाता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भगवद गीता समझाना चाहते हो, जो अपनी फोटो खींचना बंद कीजिए, और खास करके जब लिखा हुआ आएगा बिल्कुल फोटो नहीं खींचना। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो हॉस्पिस में है, मतलब मरने वाले हैं, अब उनको भगवद गीता के आधार पर मृत्यु के बारे में बताना है, तो ये विषय था। तो हमने इसको टाइटल दिया फाइनल जर्नी। भगवद गीता में आपने लिखा होगा, जिन्होंने पहले किया है ये प्रश्न आया था भगवद गीता के, तो फाइनल जर्नी। तो इसको कैसे प्रेजेंट किया था ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको केवल दिखा रहे हैं। तो ये पहला है, वृंदावन में किया गया, ये हमने अक्टूबर में 2013 में के लिए लिखा था। ओके, यहाँ से है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है जो आप देख रहे हैं, अ फेमस कोट। तो हमने क्योंकि फाइनल जर्नी है, मृत्यु का वर्णन है, तो हमने लिखा कि एक अमेरिका की मनोचिकित्सक हैं जिनका नाम है एलिजाबेथ रॉस। तो ऐसे ही हम बता रहे कि हम कुछ लिखे तो देना चाहिए किसने लिखा, हमने भी लिखा नहीं बोलना चाहिए पहली चीज। तो उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने बच्चों से कहा है कि जब मैं मरूं, मेरी मृत्यु हो, तो आकाश में गुब्बारे उड़ाना और उत्सव मनाना। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो मृत्यु है ये एक स्टेप आगे जाना है, इट्स ग्रेजुएशन फॉर मी। ये इससे प्रारंभ किया क्योंकि हमारा विषय ही यही है, हम ये समझाने वाले कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक स्टेप आगे जाना है, भगवान की ओर जाना है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन, ये आपको समझाना, इंट्रोडक्शन मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ और लिख दिया, विषय जो आप बोलने वाले हो वो इंट्रोडक्शन में आ जाना चाहिए। तो हमारा विषय आ गया इंट्रोडक्शन में, हालांकि हमने कोट दिया बाहर से कोट लिया है, लेकिन विषय आ गया कि हम क्या कहने जा रहे हैं कि मृत्यु हमारे लिए आगे जाने का अवसर है, क्योंकि हम ये किनको बोल रहे हैं ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। जैसे आपके इसमें एक प्रश्न है कि वैज्ञानिक विद्वानों की सभा में आपको परम सत्य का वर्णन करना, तो आपको ध्यान रखना जब विद्वानों की सभा में बोल रहे हैं तो विद्वानों की तरह बोलना है, वहां जाके नहीं बोले कि हरिनाम कीजिए सब कुछ हो जाएगा, तो वो विद्वान लोग हैं तो उनको शास्त्रों से कोट करना। लेकिन यहाँ किसको दिया जा रहा है, जो लोग मरने वाले हैं हॉस्पिस में हैं, तो उनके लिए हमने एक पत्रिका में हमें समझिए एक आर्टिकल लिखना है, तो ये आर्टिकल उनके लिए लिखा गया है, तो हम उनको कैसे एड्रेस करेंगे। तो आपको लिखते समय सारा ध्यान रखना कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो। तो इसीलिए फिर आगे हमने लिखा कि हालांकि उनको ये पत्र कह रही थी कि हमारे लिए ग्रेजुएशन है, लेकिन उनको ये पता नहीं था, भगवद्गीता का ज्ञान नहीं था कि किस तरह देह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन क्योंकि वो आत्मा है इसीलिए वो ऊपर या आगे जाने की कामना कर रही थी। और कहाँ जाने की कामना कर रही थी, आत्मा का अंत स्थान है भगवान के धाम में। तो हमारे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या कहने जा रहे हैं सारा आगे, अब उस चीज को हमने समझाना शुरू किया। नीचे में दिया गया, आप सबने हम सबने कई यात्राएं की हैं, और एक यात्रा का अर्थ ये होता है कि उसका एक प्रारंभ होता है और उसका एक अंत होता है। तो कई जो मूर्ख लोग हैं इस जगत के, अज्ञानी लोग हैं, वो इस जीवन को भी एक यात्रा मानते हैं कि जिसका प्रारंभ जन्म से हुआ और मृत्यु पर अंत हो गया। तो हमारी सारी चीजें किसके लिए हैं, ये बताने के लिए कि इसके बाद भी कुछ है, शुरुआत भी उससे, ये भी जो उदाहरण दे रहे हैं इसीलिए कि उनके लिए होता है। लेकिन सत्यता ये है कि जीवन समाप्त मृत्यु पर नहीं होता, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है, और एक ऐसा जीवन जिसमें फिर से संघर्ष है, फिर से दुख है। लेकिन के लिए कहे गए, जो लोग भक्त नहीं तो उनके लिए जीवन का। तो हम क्यों समझा रहे हैं ये चीजें, ताकि आपका जीवन ऐसा ना हो कि आप मरने वाले हो तो अगला जीवन आपका संघर्ष का ना हो, तो आपको क्या करना है, तो ये पूरा विषय है, ठीक है। ये ऐसे, और इसमें अंत में हमने कंक्लूजन दिया है, भगवद गीता से, ईशोपनिषद से, सब देते देते ही, केवल हमने अपने मन से सब नहीं लिखा है, और इसके बाद अंत में कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन यहाँ है, तो हमने लास्ट में उसको पैराग्राफ में दिया कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकें, जहाँ बहुत आनंद है, जहाँ गायें हैं और हर कोई उनकी सेवा में लगा है, कोई फल कोई फूल ला रहा है, कोई भोग बना रहा है, कोई कृष्ण के साथ खेल रहा है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं। तो ये क्यों कहा जा रहा है, जो मरने वाला उसको एनकरेज करने के लिए कि आपको भगवान के धाम जाना है, तो अंत तक आपको ध्यान रखना चाहिए आप किसको एड्रेस कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कष्ट नहीं है, ऐसे स्थान में भगवान कृष्ण हमें स्थान देने के लिए आतुर हैं, वो अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर हमें वहाँ स्वागत करने के लिए तैयार हैं। प्रश्न ये है कि क्या हम तैयार हैं, तो इसीलिए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आप तैयारी कीजिए भगवान के नाम का जप करके और अपने जीवन को सफल। तो ये उन लोगों के लिए था जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं है, नए लोग, इसलिए सार ये दिया गया कि उनको करना है, ठीक है। शब्दों का भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं हम लिखते जाए यहाँ से वहाँ से वहाँ से, पता चले 10,000 शब्द हो गए, क्योंकि आप तो कट कर ही नहीं सकते, अब आप ही उसको कर लीजिए जो करना है, इतने ही शब्द होने चाहिए। एक भी क्यों कहा जाता है, आपको अभ्यास कराया जा रहा है, आगे कभी आपको लिखना पड़ा कहीं पर कोई आर्टिकल, उन्होंने कहा 300 शब्दों में लिखिए, आप 3,000 भेजेंगे वो फेंक देंगे उसको, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक भगवद्गीता का हिस्से था। दूसरा एक भगवद्गीता का हिस्से आपको बताते हैं, भगवद्गीता के 5 विषयों पर ऐसे लिखना होता है, 5 सब्जेक्ट मैटर, तो उस पर लिखा था 5 सब्जेक्ट मैटर, तो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कोई भी स्क्रिप्चर होता है उसमें कोई विषय दिया, किसी विषय पर या किसी पॉइंट पर उसको चर्चा की जाती है, तो भगवद्गीता क्या है, तो फिर उसके विषय दिए गए, इंट्रोडक्शन दिए गए, और फिर उनमें से एक एक विषय को समझाया, यहाँ ईश्वर परम सत्य है, कैसे वो परम सत्य है भगवद्गीता के अनुसार, फिर कैसे उन्हें प्राप्त करना चाहिए, फिर जीव का वर्णन किया, फिर जीव के क्या लक्षण हैं, फिर प्रकृति के बाद प्रकृति कैसे है। ये उदाहरण आपको याद है ना? ओके। और फिर कैसे प्रकृति के तीन गुण हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं। देखिए सारा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे मत सोचिए कि इधर उधर से लेंगे हो जाएगा। फिर काल और समय को बहुत विभाजित कैसे किया जाता है, और फिर कर्म का वर्णन किया गया, और फिर अकर्म। तो कंक्लूजन से था कि भगवद गीता के जो चार विषय हैं वो शाश्वत हैं। ऑल द फोर्सेस ऑफ भगवद गीता ये जो है, ये बाकी जो भगवान हैं ईश्वर उनके अधीन है। तो अंत अकर्म से किया गया प्रेम भक्ति करने की प्रेरणा देते, ठीक है। और एक ईश्वर निषद का है, इसको बिल्कुल कॉपी मत कीजिएगा। ये है कि परम सत्य का वैदिक वैदिक दृष्टिकोण। तो ये आपका छठा प्रश्न है ना, शायद आपके इसमें छठा है, हाँ छठा। ईश्वर निषद के अध्ययन पर आधारित एक विद्वान परिषद में परम सत्य के विषय में आप किस प्रकार वैदिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम विद्वान परिषद में बोल रहे हैं, तो हमें शब्द कैसे इस्तेमाल करने हैं और क्या क्या देना है ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमने प्रारंभ उस पर किया कि किस तरह परम सत्य क्या है, और परम सत्य मतलब सब कुछ उसमें आता है, जो हर चीज के स्रोत हैं, सारी शक्तियों के स्रोत हैं, ये उनका वर्णन किया गया। फिर कहा गया कि लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो भगवान को क्या मानते हैं। कोई उन्हें शक्ति मानता है, कोई उन्हें कहता है कि हम सब भगवान हैं या सब कुछ भगवान है, कोई कहता है प्रेम भगवान है, इत्यादि इत्यादि। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये सारी चीज़ें भगवान के अंग अंग हो सकते हैं। भगवान सही है, भगवान ये भी है, जीव भी भगवान का अंश है इत्यादि, लेकिन वो भगवान पूर्ण नहीं है। तो वैदिक ज्ञान हमें ये समझाता है कि कैसे भगवान के परम सत्य के अलग अलग चीज़ों को समझना चाहिए। तो फिर हमने वर्णन किया कि वैदिक साहित्य क्या है, क्योंकि हमने वर्णन किया वैदिक साहित्य समझाता है, तो थोड़ा सा वैदिक साहित्य का, और फिर ईश्वोपनिषद का उसमें कहाँ स्थान है, तो वैदिक साहित्य का वर्णन करके, और फिर ईश्वोपनिषद के अनुसार फिर सारे कोटेशन भी, जैसे वो पूर्ण मधा पूर्ण मिदम से कि भगवान कैसे पूर्ण है, फिर भगवद गीता से, फिर उनके अलग अलग चीज़ों को, जैसे यहाँ पे आप देखने में लिखा है कि साधारणता हम ये मानते हैं कि भगवान का शरीर हमारी तरह है जिसमें बहुत कष्ट है इत्यादि, इसीलिए हम सोचते हैं कि भगवान का शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान को कष्ट नहीं हो सकते, तो उनका शरीर नहीं है। ये हम लोग मानते हैं कि हमारे शरीर में कष्ट है, भगवान को कोई कष्ट नहीं, इसलिए भगवान का शरीर नहीं है। तो ये जो भ्रांति है, ये मंत्र 8 में इसको परास्त किया गया है, जहाँ भगवान को अस्नाविरम अकायम कहा गया। तो ऐसे कोट करना है आपको, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए हमने लिखा है मंत्र 4 में श्री ईश्वोपनिषद के स्पष्ट बताया गया है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, कैसे प्रभुपाद ने कहा ना कि अलग अलग उनके कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो इस तरह से ऐसे इन चीज़ों को कोट करते करते इसको आपको देखना है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या करना चाहिए कि परम सत्य एक भगवत एक व्यक्ति है, जैसे बता गया, हालांकि उनका एक निराकार रूप भी है। तो जो उनके शरीर से निकलने वाली कांति वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है, और जैसे सूर्य का उदाहरण दिया गया है। और फिर कौन है वो परम सत्य, भगवान श्री कृष्ण वो परम सत्य है। हमने बीच में जो 13वें मंत्र में प्रभुपाद ने बहुत सारे कोटेशंस दिए हैं गोपाल तापनी से, यहाँ से वहाँ से समझाने के लिए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको दिया। और हमारा कंक्लूजन ये है कि जैसे प्रभुपाद का कंक्लूजन क्या था 18वें मंत्र के अंत में, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ लिखी है कि सभी जीवों को जीव अंश है, उन्हें पूर्ण समर्पण ज्ञान और भक्ति से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, इसके द्वारा वो परम सत्य को जान सके, ठीक है। तो ऐसे आपको ऐसे हाँ जी कंप्यूटर पे टाइप कीजिए, हमने टाइप करके लिखा, आप कंप्यूटर पे टाइप करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम। अगर हिंदी कर सकते हैं हिंदी कीजिए, टाइप हो सकती है शायद इंग्लिश, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी देना चाहें दे सकते हैं। आस्तिक सिद्धांत प्रयुक्ति मतलब जो जो थीसिस लोग हैं, मतलब धार्मिक लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोग का मूड एंड मिशन प्रभुपाद का। आपको कोई शब्द समझ नहीं आ रहा है बता दिए, हम इंग्लिश लेकर आए तो बता रहे। पहले में है मूड एंड मिशन और मॉरल एंड एकेडमिक इंटेग्रिटी, नैतिक और शैक्षिक, तो मॉरल एंड एकेडमिक। दूसरा है प्रीचिंग एप्लीकेशन और उसमें भी मॉरल एंड एकेडमिक है। तीसरा है अथॉरिटी और पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब आपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। चौथा पर्सनल एप्लीकेशन, पंद्रह पांचवा मूड एंड मिशन, छठा थियोलॉजिकल एप्लीकेशन और सातवां प्रीचिंग एप्लीकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमें पता है आज आप लोग बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हमें दुख हो रहा है कि कल से 7:30 बजे आप लोगों के दर्शन नहीं होंगे। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ।